जरा इमेजिन करके देखते हैं कि एक बहुत ही विशाल और घुप अंधेरे कमरे में फंस गए। एक ऐसा कमरा जहां कड़कड़ाती ठंड है, एकदम सन्नाटा है और लाइक एक अजीब सा खौफ हवा में तैर रहा
बाप रे, काफी डरावना विजुअल है।
है ना? और उस कमरे में ना सिर्फ एक खिड़की है और उसी खिड़की से सबसे ज्यादा बर्फीली और कंपा देने वाली हवा अंदर आ रही है, जिसने पूरी तरह से डरा के रख दिया है।
अच्छा।
उस खिड़की की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन तभी बिल्कुल अचानक उसी खिड़की से, जहां से वो सबसे ज्यादा ठंड और तबाही आ रही थी, सूरज की सबसे पहली सबसे गर्म और चमकदार किरण अंदर आती है। मतलब जहां से सबसे बड़ा खौफ आया, बिल्कुल वहीं से सबसे बड़ी उम्मीद भी आई।
वाओ, मतलब ये सच में बहुत ही पावरफुल विजुअल है। और अगर सच कहूं तो ये हमारी आज की इस गहरी चर्चा को समझने के लिए एकदम एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है।
बिल्कुल। तो आज के हमारे सोर्सेज में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ड के रिसर्च नोट्स हैं और यशाया यानी आइजिया के ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल हैं। खासकर उनके अध्याय 9 से 12 तक का जो हिस्सा है ना, हम उस पर फोकस कर रहे हैं।
राइट।
आज हमारा मिशन है इन पुराने पन्नों की तह तक जाना और उस फॉर्मूले को डीकोड करना जो बताता है कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे ना, जब इंसान हर तरफ से हार मान ले, तो वापसी कैसे होती है। हम किंग आहाज के उस दौर में जाएंगे जहां बस डर और अंधेरा हावी था।
बिल्कुल। और उस अंधेरे की शुरुआत कहां से हुई थी, ये समझना बहुत जरूरी है।
तो वो कहां से हुई थी?
अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे ना, तो ये अंधेरा किंग आहाज के एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल लेकिन विनाशकारी फैसले का नतीजा था। उनके राज्य पर उस वक्त उत्तरी दुश्मनों का सीरिया और इसराइल के कुछ हिस्सों का खतरा मंडरा रहा था।
ओके, तो उन पर अटैक होने वाला था।
हाँ, अब एक राजा के तौर पर आहाज के पास दो विकल्प थे, या तो वो ईश्वर पर भरोसा रखें, या फिर उस समय की सबसे बड़ी सुपर पावर असीरिया के साथ हाथ मिला लें। उन्होंने शॉर्टकट चुना, उन्होंने असीरिया की सैन्य ताकत पर भरोसा किया। और पता है, इसी एक फैसले ने उनके पूरे राज्य को ऐसे अंधकार में धकेल दिया जहां सिर्फ और सिर्फ तबाही थी।
मतलब ये तो वही बात हो गई कि एक छोटे गुंडे से बचने के लिए शहर के सबसे बड़े डॉन से हाथ मिला लिया।
हाँ, एग्जैक्टली। और उस डॉन ने अपना असली रंग दिखाया भी। लेकिन यहां जो सबसे दिलचस्प बात है ना, जो आपके उस खिड़की वाले उदाहरण से सीधी जुड़ती है, वो है रोशनी के आने की दिशा। डॉक्टर ऑसवर्ल्ड अपने नोट्स में ऐतिहासिक और जो भौगोलिक मैप है उसका बहुत शानदार विश्लेषण करते हैं। वो बताते हैं कि जब असीरिया ने इस इलाके पर हमला किया, तो उनका कहर सबसे पहले उत्तरी कबीलों पर टूटा।
अच्छा, उत्तरी कबीले मतलब?
मुख्यतः ज़ेबुलून और नफ्ताली के क्षेत्रों पर। ये वही इलाका है जिसे हम बाद में गलील के नाम से जानते हैं। तबाही सबसे पहले यहीं से शुरू हुई थी।
ओके, तो गलील वो खिड़की थी जहां से बर्फीली हवा अंदर आई।
बिल्कुल। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा और लाइक सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट ये है कि सदियों बाद मसीहा की रोशनी और उनकी पूरी मिनिस्ट्री का जो सबसे अहम काम था ना, वो सबसे पहले उसी गलील के क्षेत्र से शुरू हुआ।
अरे वाह।
हाँ, डॉक्टर ऑसवर्ल्ड कहते हैं कि ईश्वर का पैटर्न ही यही है। अंधेरा वहीं से मिटना शुरू होता है जहां से वो सबसे पहले फैला था।
ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पैटर्न है। लाइक जहां सबसे गहरी चोट लगी, वहीं से हीलिंग शुरू हुई। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आ रहा है।
हाँ, बताइए।
अगर इस घने अंधेरे को और असीरिया जैसी खौफनाक सैन्य ताकत को रोशनी से मिटाना है, तो वो रोशनी किस फॉर्म में आएगी? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी तो यही कहती है कि अगर सामने से कोई टैंक लेकर आ रहा है, तो आपको उससे बड़ा टैंक चाहिए।
बिल्कुल, लोहे को लोहा काटता है, राइट?
एग्जैक्टली। तलवार का जवाब तलवार और बड़ी सेना का जवाब विशाल सेना।
हाँ, और इंसान की इसी सोच को ना यशाया के इन अध्यायों में पूरी तरह से पलट कर रख दिया गया है।
अच्छा, कैसे?
देखिए, असीरिया की विशाल और वो जो खूंखार सेना थी जिसके नाम से लोग कांपते थे, उसका सामना करने के लिए ईश्वर का जवाब कोई बहुत बड़ा योद्धा या हथियारों से लैस सेनापति नहीं था।
तो फिर कौन था?
उनका जवाब था एक बच्चा।
वेट एक सेकेंड, एक बच्चा?
हाँ, एक बच्चा।
जरा सोचकर देखिए, अगर किसी शहर के दरवाजे पर एक ऐसी क्रूर सेना खड़ी हो जो लाइक शहरों के शहर जला देती है, और शहर के लोग खौफ में जी रहे हों, ऐसे में अगर कोई आकर अनाउंस करे कि डरो मत, हमारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ है, तो क्या उन लोगों को ये कोई भद्दा मजाक नहीं लगा होगा?
बिल्कुल लगा होगा।
आम इंसान तो किसी शक्तिशाली सुपर हीरो या किसी मिलिट्री जीनियस की उम्मीद कर रहा होगा ना। ये तो ताकत के बजाय कमजोरी का प्रदर्शन लग रहा है।
सुनने में ये बिल्कुल इलॉजिकल लगता है, लेकिन डॉक्टर ऑज़वाल्ड इसे बहुत गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि यही तो ईश्वर का असली तरीका है।
अच्छा।
हाँ, इंसान जिसे कमजोरी समझता है ना, वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत से भी कहीं कहीं अधिक शक्तिशाली है। पूरे ग्रंथ में बच्चों के नाम बहुत गहरे संदेश देते हैं।
जैसे कि कौन से नाम?
जैसे इमैनुअल, जिसका मतलब है ईश्वर हमारे साथ है। फिर एक और नाम है माहिर शलाल हाश बज।
बाप रे, ये तो काफी लंबा नाम है, इसका क्या मतलब है?
इसका अर्थ है कि लूट जल्दी होने वाली है। और एक और है शारिया शूब, यानी एक अंश ही वापस लौटेगा। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उस समय के हालात के लिए ईश्वर के एक तरह से स्टेटमेंट्स थे।
तो मतलब जब किंग आहाज पैनिक कर रहे थे और असीरिया से डील साइन कर रहे थे, तब ईश्वर का मैसेज ये था कि शांत रहो, जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन असली कंट्रोल मेरे हाथ में।
बिल्कुल सही। और यशाया 9:6 में उस बच्चे के लिए जो कहा गया ना, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वहां लिखा है, हमारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ है और उसे वंडरफुल काउंसलर, माइटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर और प्रिंस ऑफ पीस कहा जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये कोई साधारण बच्चा तो नहीं हो सकता था।
अच्छा, इस पॉइंट पे ना मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था, कुछ हिस्टोरिकल स्कॉलर्स का मानना है कि ये भविष्यवाणी शायद राजा अहाज के बेटे हिजकिया के बारे में थी।
अच्छा, हिजकिया?
हाँ, क्योंकि वो बाद में एक बहुत अच्छे राजा बने थे ना, तो क्या ऐसा हो सकता है?
देखिए, ये डिबेट बहुत पुरानी है, लेकिन डॉक्टर रोज़वाल्ड इस धारणा को पूरी तरह से पूरी तरह खारिज करते हैं।
क्यों?
लॉजिक बहुत सिंपल है। हिजकिया चाहे कितने भी महान और न्यायप्रिय राजा क्यों न रहे हों, क्या किसी भी साधारण इंसान को माइटी गॉड यानी शक्तिशाली ईश्वर या एवरलास्टिंग फादर कहा जा सकता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
यानी एक कमजोर सा दिखने वाला बच्चा।
वाओ, यहाँ से ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस शुरू होता है। मैं सोच रही थी कि,
हाँ बताइए,
अगर ईश्वर का जवाब एक बड़ी मिलिट्री थ्रेट के लिए महज एक बच्चा था, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो असीरिया की इतनी बड़ी सेना थी, वो तो असल बीमारी थी ही नहीं।
एग्जैक्टली।
है ना? क्योंकि अगर बीमारी मिलिट्री होती तो इलाज भी मिलिट्री होता। तो सवाल ये है कि अगर बाहरी दुश्मन असली मुद्दा नहीं था, तो इन लोगों की असली बीमारी थी क्या?
आपने बिल्कुल सही तार पकड़े हैं। समस्या पूरी तरह से अंदरूनी थी, वो राजनीतिक या सैन्य बिल्कुल नहीं थी।
अंदरूनी मतलब करप्शन टाइप?
हाँ, डॉक्टर ऑज़वाल्ड उस समय के समाज की चार ऐसी अंदरूनी बुराइयों का जिक्र करते हैं जो उन्हें अंदर से पूरी तरह खोखला कर चुकी थी। पहली थी अहंकार या घमंड। दूसरी थी अपने इंसानी नेताओं को भगवान का दर्जा दे देना। तीसरी थी समाज में बेतहाशा फैली हुई हिंसा।
बाप रे।
और चौथी थी अन्याय। उन्होंने ईश्वर और उनके नियमों को, जो उनका तोड़ा था, उसे पूरी तरह से भुला दिया था। समाज अंदर से सड़ चुका था और वो बेकूफ असीरिया को अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मान रहे थे।
और जब अहंकार की बात आती है ना, तो मुझे सोर्स मटेरियल में दी गई वो ऐतिहासिक घटना याद आ रही है जो सच में दिमाग हिला देने वाली है।
ऐसा?
आप उस 9:11 वाले कनेक्शन की बात कर रही हैं?
हाँ।
वो यशाया 9:10 की लाइन और अमेरिका के 9/11 अटैक वाला कनेक्शन, वो बहुत क्रेजी है।
वो बहुत ही क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे हम कैसे हम इतिहास को बिना समझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं।
बिल्कुल।
यशाया 9:10 में एक लाइन है, वहां कुछ लोग जिनका शहर पूरी तरह तबाह हो गया ना, वो पूरे घमंड में आकर कहते हैं, ईंटें गिर गई हैं पर हम तराशे हुए पत्थरों से दोबारा बनाएंगे, गूलर के पेड़ काट डाले गए हैं पर हम उनकी जगह देवदार के पेड़ लगाएंगे।
अगर मैं इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में सुनूं बिना किसी बैकग्राउंड के, तो ये मुझे किसी मोटिवेशनल स्पीकर की लाइन लगेगी।
बिल्कुल।
हार ना मानने वाला एटीट्यूड, बाउंस बैक करने का जज्बा, ईंटें गिरी हैं तो क्या हुआ, हम मार्बल का महल बना देंगे।
एग्जैक्टली। और यही गलती 2001 में 9/11 के हमलों के ठीक बाद अमेरिका के कुछ बड़े राजनेताओं ने भी की।
अच्छा, किसने की थी?
टॉम डैशल और जॉन एडवर्ड्स जैसे नेताओं ने। उन्होंने कांग्रेस में और अपनी पब्लिक स्पीचेस में इस लाइन का बहुत इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे राष्ट्र की हिम्मत, रेजिलियंस और वापसी करने के जज्बे के तौर पर जनता के सामने पेश किया। टीवी पर यह सुनने में बहुत अच्छा लगा। लोगों ने तालियां भी बजाई। लेकिन वे इसके असली बाइबल के संदर्भ से पूरी तरह अंजाम थे।
और इसका असली संदर्भ तो बहादुरी का नहीं बल्कि हद पार कर देने वाले अहंकार का था, राइट?
एकदम सही। मूल कहानी में ये लाइन उन लोगों का घमंड दिखा रही थी जो कह रहे थे कि ईश्वर ने जो सजा या विनाश हम पर भेजा है ना, हम अपनी दौलत, अपनी इंजीनियरिंग और अपनी ताकत से उसे पलट देंगे।
मतलब वो मान ही नहीं रहे थे।
हाँ, वो कह रहे थे ईश्वर ने हमें ईंटों तक गिरा दिया, कोई बात नहीं, हम महंगे तराशे हुए पत्थरों से फिर खड़े हो जाएंगे। ये ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जाने का खुला ऐलान था।
वाओ।
अपनी गलतियों से कुछ भी ना सीखने का रवैया था। ये रेजिलियंस नहीं था, ये रेबेलियन था।
मतलब जिन राजनेताओं को लग रहा था कि वो देशवासियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, वो असल में जाने अनजाने में उसी अहंकार को दोहरा रहे थे जिसकी वजह से यशाया के समय में तबाही आई थी।
बिल्कुल।
इसे सुनकर मुझे एक बात समझ आती है, ये तो ऐसा हो गया जैसे जैसे किसी इंसान के खून में इन्फेक्शन फैल गया हो और वो अपने कमरे की हवा साफ करने में लाखों रुपए खर्च कर रहा हो।
क्या बात है, बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये।
है ना, मतलब बाहरी दुश्मन से लड़ना हमेशा आसान लगता है, लेकिन खुद के अंदर की बुराई, अन्याय और अहंकार को उसको स्वीकार करना सबसे मुश्किल काम है।
एकदम, उनकी असली बीमारी उनका ईश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति रवैया था। और मजे की बात देखिए, डॉक्टर ओसवाल्ड कहते हैं कि इंसान की फितरत आज भी नहीं बदली है।
वो कैसे?
आज भी हम चुनाव दर चुनाव यही करते हैं, हम इकोनॉमी, बॉर्डर सिक्योरिटी या महंगाई जैसी बाहरी समस्याओं को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई नया नेता आएगा, जादू की छड़ी घुमाएगा और सब ठीक कर देगा।
हम सब यही तो करते हैं,
लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी नेता, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, उस मूल समस्या को नहीं सुलझा सकता जो हमारे समाज के चरित्र में, हमारी मोरालिटी में गहराई तक बैठ कर चुकी है।
ये बात थोड़ी चुगमी राली है लेकिन सच है। अब यहाँ से मैं इस कहानी के उस सबसे खतरनाक विलन की तरफ आना चाहती हूँ जिसे सब कुछ का जिम्मेदार माना जा रहा था, असीरिया।
असीरिया।
हाँ, अगर इंसान का घमंड और अंदरूनी करप्शन ही असली बीमारी थी तो उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी और खूंखार ताकत यानी असीरिया इस पूरे नाटक में क्या रोल प्ले कर रही थी?
असीरिया का रोल समझना ना इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। देखिए, असीरिया लगातार 200 सालों से दुनिया की सबसे क्रूर और अनस्टॉपेबल ताकत बना हुआ था।
200 साल, बाप रे।
हाँ, उनके घमंड का आलम यह था कि वे सोचते थे कि वे अपने टैलेंट, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी और अपनी सुपीरियोरिटी के बलबूते पर पूरी दुनिया को कुचल रहे हैं। डॉक्टर ओसवाल्ड के नोट्स में एक रूपक है, असीरिया खुद को ऐसा मानता था जैसे कोई इंसान बहुत आसानी से किसी चिड़िया के घोंसले से अंडे निकाल लेता है और वो बेचारी चिड़िया डर के मारे पंख भी नहीं फड़फड़ा पाती। वो देशों को ऐसे ही लूट रहे थे।
लेकिन असलियत में उनका स्टेटस क्या था?
असलियत में इशाया बताते हैं कि असीरिया केवल ईश्वर के हाथ की एक कुल्हाड़ी था, बस एक टूल,
बस एक कुल्हाड़ी।
हाँ, ईश्वर उस सुपर पावर का इस्तेमाल महज इसलिए कर रहे थे ताकि अपने भटके हुए घमंडी लोगों को सबक सिखा सकें।
डॉक्टर ओसवाल्ड इसे हबकू के ग्रंथ से जोड़ते हैं।
अच्छा।
जहाँ एक बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है, सवाल ये है कि क्या ईश्वर बुरे लोगों का इस्तेमाल कम बुरे लोगों को अनुशासित करने के लिए कर सकते हैं?
और इसका जवाब है?
जवाब है हाँ। असीरिया खुद को सर्वशक्तिमान समझ रहा था, लेकिन वो केवल एक औजार था जिसे ईश्वर ने काम पर लगाया था।
ये कॉन्सेप्ट सच में माइंड बेंडिंग है। मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि एक पेंट ब्रश खुद को दुनिया का सबसे महान पेंटर समझ बैठे।
बिल्कुल, है ना, वो ब्रश भूल गया है कि कैनवस पर जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं वो उसके टैलेंट के नहीं बल्कि उसे पकड़ने वाले हाथ के हैं। लेकिन जब हम इस बारे में सोचते हैं तो क्या इससे मन में ये डर नहीं बैठता कि ईश्वर कितने कठोर हो सकते हैं?
डर तो लगता है।
एक पूरी क्रूर सेना का इस्तेमाल करना, ये थोड़ा डराने वाला है।
ये डर स्वाभाविक है, मैं मानता हूँ, लेकिन डॉक्टर ओसवाल्ड इसे बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। वो बताते हैं कि ये दरअसल इतिहास पर ईश्वर के पूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।
ओके।
ईश्वर का न्याय ऐसा नहीं है कि वो असीरिया के जुल्मों को अनदेखा कर रहे थे। असीरिया को अपनी ताकत पर घमंड हो गया था, वो भूल गए थे कि वो सिर्फ एक टूल है।
और जैसे ईश्वर का उद्देश्य पूरा हुआ ना, असीरिया का पतन शुरू हो गया। जरा सोचिए, जो साम्राज्य 200 सालों तक अजय रहा वो अपने पीक पर पहुंचने के मात्र 40 साल के अंदर इतिहास के पन्नों से ऐसे मिट गया जैसे कभी था ही नहीं।
वेट, सिर्फ 40 साल में 200 साल का एम्पायर? हाँ, सिर्फ 40 साल में। तो ये संदेश डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि चाहे कोई दुश्मन या सुपर पावर कितनी भी विशाल और अनस्टॉपेबल क्यों ना दिखे, अंत में उसे भी न्याय का सामना करना ही पड़ेगा। इंसान का अहंकार कभी भी परमानेंट नहीं होता।
ये बहुत सुकून देने वाला विचार है। तो जब असीरिया नाम का वो विशाल घमंडी और तबाही मचाने वाला पेड़ काटकर गिरा दिया जाएगा तो नई शुरुआत कहां से होगी?
अच्छा सवाल है,
क्योंकि तबाही के बाद तो सिर्फ एक जला हुआ मरा हुआ ठूंठ ही बचता है ना, उसमें तो कोई जान नहीं होती।
और यहीं पर यशाया का अध्याय 11 पिक्चर में आता है। ये पूरी कहानी का मुझे लगता है सबसे खूबसूरत हिस्सा है।
इसमें क्या है?
वहां वर्णन है कि एक नए जीवन की कोंपल फूटेगी, लेकिन वो यशाये के ठूंठ यानी स्टंप ऑफ जेसी से निकलेगी। एक ऐसा ठूंठ जो देखने में पूरी तरह मृत लगता है, जिसे अगर कोई कुचल भी दे तो किसी को फर्क ना पड़े।
अच्छा,
लेकिन उसी डेड एंड से एक नया अनंत राज्य जन्म लेगा।
एक सेकंड, मुझे यहाँ एक मेजर लॉजिकल गैप दिख रहा है।
कैसा गैप?
आप कह रहे हैं यशाया का ठूंठ, अगर हम इसराइल के इतिहास की बात करें तो सबसे बड़ा, सबसे महान और पावरफुल राजा कौन था? किंग डेविड।
बिल्कुल।
यशाया तो सिर्फ डेविड के पिता थे, एक साधारण से किसान जिनकी अपनी कोई शाही पहचान नहीं थी। अगर आपको किसी नए शानदार साम्राज्य की बात करनी है तो आप किंग डेविड के लिए इसी के नाम लेंगे ना। ये अचानक से डेविड को बाईपास करके सीधे उसके पिता पर क्यों चले गए? क्या डेविड का नाम लोगों के लिए कोई मैजिक चार्म या लकी तावीज बन गया था जिसे तोड़ना जरूरी था?
वाओ, आपने बिल्कुल परफेक्ट सवाल पूछा है, और इसका जवाब भी उसी तावीज वाली बात में छुपा है।
अच्छा,
देखिए, इंसान की हमेशा से ये फितरत रही है कि वो अपनी सुरक्षा, अपनी आइडेंटिटी अतीत की महानता या शाही वंश में ढूंढता है। उस समय लोगों को लगने लगा था कि अरे, हम तो डेविड के वंश से हैं, हमारे पास डेविड की लेगेसी है, तो हम पर कोई आंच आ ही नहीं सकती। ईश्वर इस झूठे कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ना चाहते थे।
मतलब कोई पुरानी शान और शौकत का सहारा नहीं मिलेगा?
बिल्कुल नहीं। ईश्वर ये जताना चाहते थे कि ये नया उद्धार, ये नई उम्मीद पुरानी इंसानी सफलताओं या शक्ति का एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं है।
ओके।
ईश्वर उम्मीद को बिल्कुल जीरो से एक साधारण किसान यशाई की जड़ों से शुरू करना चाहते थे, ताकि किसी को भी ये भ्रम ना रहे कि ये इंसानी ताकत से हुआ है। ये स्पष्ट हो जाए कि यह पूरी तरह से ईश्वरीय कार्य है।
वाओ, तो ये जो नया राजा इस ठूंठ से निकलेगा वो पुरानी दुनिया के राजाओं से अलग कैसे होगा? क्या वो भी असीरिया की तरह तलवार और भाले से राज करेगा?
नहीं, उसका तरीका बिल्कुल अलग होगा। यशाया लिखते हैं कि वो अपने मुंह की छड़ी यानी अपने शब्दों की सत्यता से राज करेगा। उसकी ताकत मिलिट्री नहीं होगी।
तो क्या होगी?
वो ईश्वरीय आत्मा से भरा होगा, जिसमें ज्ञान, समझ, सलाह और असली शक्ति होगी। और इस नए राज्य की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यहां इंसान की थोपी हुई पावर के बजाय देवीय शांति का बोलबाला होगा।
और इसी शांति को दर्शाने के लिए वो बहुत ही फेमस मेटाफर यूज किया गया ना, जहां भेड़िया और मेमना एक साथ रहेंगे।
जी हाँ, वो वुल्फ एंड लैम वाला मेटाफर। डॉक्टर ऑसवर्ल्ड यहां C.S. लुइस का जिक्र करते हैं, जिन्होंने इस रूपक को बहुत बहुत ब्रिलियंट तरीके से समझाया है।
उन्होंने क्या कहा था?
लुइस कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक मांसाहारी शेर सच में जाके घास चरने लगेगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो शेर के दांतों का क्या काम?
हाँ, अगर शेर घास खाने लगे तो उसे सबसे पहले एक अच्छे डेंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी।
हाँ बिल्कुल, लुइस का कहने का अर्थ ये था कि ये जानवरों की बायोलॉजी बदलने के बारे में नहीं है। ये दुनिया से हिंसा, क्रूरता और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला पावर डायनेमिक है ना, उसके खत्म होने का एक गहरा रूपक है।
ओके, समझ गई।
ये उस शांति का प्रतीक है जहां समाज का सबसे ताकतवर इंसान यानी भेड़िया और सबसे कमजोर इंसान यानी मेमना बिना किसी डर के, बिना किसी शोषण के एक साथ रह सकें। ये उस नए साम्राज्य की कल्पना है जहां नफरत, युद्ध और अन्याय का कोई स्थान नहीं होगा।
ये एक ऐसे यूटोपिया की तरह लगता है जिसकी उम्मीद आज भी पूरी दुनिया कर रही है।
बिल्कुल।
तो इस चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए ये जानना जरूरी है कि ये मसीहा काम कैसे करेगा, दुनिया को एक साथ कैसे लाएगा।
अंत में मसीहा एक झंडे के रूप में काम करेगा, एक बैनर। पुराने जमाने में जब सेनाओं को इकट्ठा करना होता था ना, या रास्ता दिखाना होता था, तो एक ऊंचा झंडा फहराया जाता था जिसे देखकर दूर दूर से लोग आ जाते थे। मसीहा पूरी दुनिया की जातियों को सत्य और शांति के तले इकट्ठा करने वाला वो झंडा बनेगा। और डॉक्टर ऑसवाल्ड एक और बहुत ही पोएटिक बात पॉइंट आउट करते हैं।
वो क्या है?
कि असीरिया, जो कभी तबाही का रास्ता था, अब वहीं से भटके हुए लोगों की वापसी के लिए एक राजमार्ग बनेगा, एक हाईवे।
अरे वाओ, मतलब जो सोर्स आपकी तबाही का कारण था, ईश्वर उसी सोर्स को आपकी वापसी का रास्ता बना देंगे।
यही तो ईश्वरीय योजना की सबसे बड़ी सुंदरता है। सदियों बाद इतिहास ने यह देखा भी कि कैसे पूरी दुनिया में छितरे हुए, टूटे हुए लोग वापस एकत्रित हुए, जिनके बारे में दुनिया ने सोच लिया था कि इनका वजूद मिट चुका है।
एक आखिरी बात जो मुझे डॉक्टर ओसवाल्ड की नोट्स में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो है कम्फर्ट यानी दिलासा शब्द का असली मतलब। जब हम आज के जमाने में कहते हैं कि किसी को कम्फर्ट की जरूरत है, तो हमारा मतलब होता है कि उसे कोई चाय पिला दे, कंधे पे हाथ रखकर मीठी मीठी बातें करे, उसे बुरा महसूस न होने दे।
हाँ, आज कम्फर्ट का मतलब किसी को नर्म और भावुक महसूस कराना हो गया है।
एग्जैक्टली।
लेकिन डॉक्टर ओसवाल्ट याद दिलाते हैं कि बाइबल के मूल हिब्रू संदर्भ में नखमू शब्द जो है, इस कम्फर्ट का मतलब रीढ़ की हड्डी में फौलाद भरना है।
वाओ, रीढ़ की हड्डी में फौलाद।
हाँ, ये इंसान को कमजोर, लाचार या इमोशनल बनाने के लिए नहीं है, ये उसे अंदर से इतनी ताकत, इतना सॉलिड फाउंडेशन देने के लिए है कि वो हर डर का डटकर सामना कर सके। इसका अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि ईश्वर पर अटूट भरोसा रखो और दुनिया की किसी भी ताकत से डरो मत।
तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें ना, तो ये समझ आता है कि ताकत और सर्वाइवल को लेकर हमारा नजरिया कितना कितना उल्टा है।
बिल्कुल।
हम हमेशा बाहरी दीवारों को ऊंचा करने, अपनी मिलिट्री को बढ़ा करने या आज के जमाने की टेक्नोलॉजी में अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं। हमें लगता है कि जो चीज बड़ी और आक्रामक है वही हमें बचाएगी। जबकि डॉक्टर ओसवाल्ड का ये पूरा अध्ययन हमें बताता है कि असली ताकत इंसान के अंदरूनी बदलाव में है, अपने घमंड को जीरो करके एक सच्ची अदृश्य शक्ति पर भरोसा करने में है।
सही बात है।
शांति दुनिया के शोर से नहीं बल्कि अंदर के उस फौलाद से आती है जो जो किसी भी असीरिया के सामने झुकने से मना करते।
यही इस पूरी ग्रंथवन और इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान है। जब हम अपनी इंसानी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि हम खुद को नहीं बचा सकते, तभी असली ईश्वरीय शक्ति काम करना शुरू करती है।
तो आज की इस डीप डाइव चर्चा को वाइंड अप करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब एक ऐसे विचार पर फोकस करें जो इन पुराने पन्नों से निकलकर सीधे हमारे आज के दौर पर लागू होता है। जरा सोचकर देखिए, अगर उस जमाने की अजय लगने वाली असीरियन सेना जिसने 200 सालों तक दुनिया पर एक छत्र राज किया, जिसके नाम से लोग कांपते थे,
हाँ हाँ।
अगर वो विशाल इतिहास के नाटक में महज एक कुल्हाड़ी थी, एक ऐसा छोटा सा औजार जो अपना काम खत्म होते ही इतिहास से गायब हो गया, तो आज के इस आधुनिक दौर में हम जिन चीजों को अजय और सर्वशक्तिमान मानते हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ी ग्लोबल सुपर पावर हो, तेजी से दुनिया को बदलती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या हमारी अपनी बनाई हुई बड़ी बड़ी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं।
बिल्कुल।
क्या पता भविष्य के इतिहास में जब पीछे मुड़कर देखा जाएगा तो ये सब भी बस किसी अगले बड़े अध्याय की शुरुआत करने के लिए रखे गए छोटे मोटे हथियार मात्र ही साबित हो।
ये बहुत ही गहरा विचार है
ना? जैसे उस घुप अंधेरे कमरे में जिस खिड़की से सबसे ज्यादा डराने वाली बर्फीली हवा आ रही थी, उसी ने सूरज की सबसे पहली और सबसे गर्म किरण को रास्ता दिया था। शायद इतिहास के जिन तूफानों से, जिन जिन बदलावों से हमें आज सबसे ज्यादा डर लगता है, उन्हीं के भीतर हमारे आने वाले कल की सबसे बड़ी उम्मीद छुपी है। सोचिएगा जरूर।